پھر آپ دیکھیں امت مسلمہ کا اصل منصب کیا ہے، منصب سمجھتے ہیں نصب سے، منصب مفعل، جھنڈا نصب ہو گیا، وہی لفظ ہے جمنا، جدھر نظریں گڑی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں نا نظریں نصب کر دی، نگاہیں وہاں گاڑ دی، یعنی امت مسلمہ کو ٹھکنا کدھر ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، قوموں کی رہنمائی کو جتنی امتیں ہوئیں ان میں سب میں سے تم بہتر امت ہو، تم اس لیے میدان کار میں نکالا گیا کہ تم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو، یا تم اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، نیکی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، کیا پتا چلا؟ کن تم، ہو تم. بعض مفسرین اس پر روتے ہیں، کہتے ہیں یہ کن تم ہو تم نہیں ہے، تھے تم. آپ کہتے ہیں نا عربی زبان میں کانا یکونو واز کے معنوں میں آتا ہے، اٹ واز، لیکن جب یہ ماضی استمراری ہے، کنٹینیوس ٹینس ہے، تو ماضی اور حال دونوں کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. یہاں یہ سارے معنی ہیں. او مسلمانوں، تم تھے اچھی امت کب تک؟ جب تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں، تم ہو، تم رہو گے. کب تک؟ جب تک تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے. اللہ آپ کو مجھے یہ آنر دے رہے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر میرے حال 104 ہے، اور اگلی جو آیت ہے یہ 109 ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں تک یہ آیت 109 ہے سورۃ آل عمران کی. دونوں میں بات ایسی، پہلے میں اللہ نے کنفرم کر دیا ہو تم، اور اس میں آپشن دے دی ولتکن، ہونی چاہیے. تو دونوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھے، تین چیزیں ہیں، دعوت الی الخیر اور ینہون عن المنکر اور یامرون بالمعروف. اور معروف نیکیاں ہیں، منکر بری چیزیں، اور الخیر کے ابن عباس کیا کہتے ہیں، الخیر کے ہوا قرآن و سنہ. ہر بندہ اپنے مسلک کی طرف اگر بلا رہا ہے نا، تو وہ الخیر نہیں ہے، وہ بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کی طرف بلا رہا ہے. اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت ہے، اگر تم یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرمانبردار ہوں گے، اور تم ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اور 5 سیکنڈ تک اس آیت پہ غور کریں. اگر تم یہ کام کرنے کے لیے نہیں نکلو گے، سوچیے کون سا کام ہے. سورۃ توبہ میں آپ کو پتا کیا کام تھا، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے تبوک کے لیے نکلنا تھا. اللہ کہتا ہے تم ڈھیلے ہو گئے ہو، تمہیں ضرورت نہیں، سست ہو گئے ہو، تو یاد رکھو اللہ تمہیں بڑی تکلیف کا عذاب دے گا. یہ کون سی تکلیف ہوتی ہے، لکھ لیں. کوئی فتویٰ نہیں دینے لگی، بس اس آیت کو ایکسپلین کرنے کی جرت کرنے لگی ہوں. جب ہم اللہ کے رستے سے نکلتے ہیں، جب ہم یہ کام کرنے کے لیے نکلنا نہیں چاہتے یا نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے، تو اللہ ہمیں دنیا کی تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے. ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا ہم یہ کام نہیں کر رہے تھے، ورنہ یہ جو آزمائش آئی ہے اس کے وقت میں ہم کیسے کنٹینیو کرتے. بس آپ قرآن کا کورس کر رہے ہیں، آپ تعلیم لے رہے ہیں نا، آپ نے کورس جوائن کیا، آپ کو پتا اس میں آپ کو ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اسائنمنٹ بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، کچھ دن مزاج میں کوئی سستی آئی یا کوئی وجہ بنی یا بیماری آئی، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے. پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو ایک ہفتہ ریسٹ کر لوں پھر جاتی ہوں. کرتے کرتے کیا ہوا کہ ایک دو بھی گزر گئے، آپ ڈھیلے ہو گئے یا آپ کو لگتا ہے ابھی ہمت نہیں ہے. اتنے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں، آپ کے ان لاز آ رہے ہیں، مثال ہے کوئی دور کے رشتے دار قریب کے ہیں جو بہت آپ سے ٹائم لیں گے. اب آپ کیا کہیں گے، شکر ہے اللہ کا کورس میں نہیں جا رہی، تو اب مہمانوں کو ڈیل کر لوں گی. اگر میں جا رہی ہوتی تو یہ میں کیسے کرتی؟ یا مثلاً اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی فرد ایسا آ گیا. اب آپ کہتے ہیں دیکھو ذرا नहीं जा रही थी ना, तो अब घर में देख रही हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुमको तकलीफ देगा। शायद वो जो आजमाइश आई वो हमारे ना निकलने की वजह से थी। जैसे मैंने एक अपनी आंखों से वाकया देखा कि जुमे का दिन था तो घर के बाकी मर्द मस्जिद चले गए। एक मर्द जो तबीयतन ज़रा सुस्त मिजाज थे या आखिरी वक्त पे निकलना चाहते थे, तो वो भी घर में ही थे। इतने में घर का एक छोटा बच्चा जो खेल रहा था ऊपर चढ़ा कहीं, तो वहां से उसको चोट लगी, गिरा तो उसके यहाँ कोई फर्नीचर की चीज़ लगी तो उसका खून निकला। एकदम घर में क्योस पड़ गया। जल्दी से बुलाया उसको बाप, वही जो मर्द भी था घर में, तो वो भी लेके जाके डॉक्टर के पास, तो उस बच्चे को स्टिचेस आए। अब बाद में कॉन्वर्सेशन क्या हो रही थी, बाप क्या कह रहा है, अगर मैं चला गया होता और इसको जो चोट लगी है तो तुम लोगों ने क्या करना था। वो इस पे खुश है कि शुक्र है अभी मैं घर पे था और मैं बच्चे को ले गया। लेकिन उसको ये नहीं पता, अगर तुम जुम्मे के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा। उस मासूम को शायद चोट लगी बाप के ना जाने की वजह से। हम नहीं समझते इस बात को, यकीन करें ये वो फलसफा है कि अगर समझ आ जाए ना तो दुनिया की मुसीबतों, तकलीफों, बीमारियों, परेशानियों और दर्द सर से बचने के लिए हम निकल पड़े कि अल्लाह मुझे बचा ले इस मुसीबत से, मैं जा रही हूं। अच्छा खैर, यहां तक तो आपका पर्सनल मैटर चल रहा है ना कि तुम नहीं निकलोगे अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डाल के घर बिठा देगा। दूसरी बात देखिए जरा, बड़ी मजे की है। अब सवाल पैदा होता है, आप निकल गए, आपका काम कौन करेगा, आपकी वाली कुर्सी पे बैठ के कौन सीखेगा सिखाएगा का, और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फरमाबरदार होंगे। मजे की बात देखिए, पूरी फरमाबरदारी पे गौर करें, पीछे से टॉपिक चल रहा है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और तुम इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। तुम नुकसान उनको कैसे पहुंचाना चाहते हो, तुम्हारी जगह पे आ गए, तुम्हारी कुर्सी पे अब वो बैठते हैं। तुम पढ़ा रहे थे बड़े शौक से, तुमने जरा सा नखरा किया, अल्लाह ने तुम्हें उठा के बाहर फेंका, तुम्हारी जगह तुमसे अच्छा पढ़ाने वाला आ गया। ये बहुत मुझे कहा जा रहा है, तुम नहीं उसका बिगाड़ सकोगे क्योंकि आपने जगह खाली की थी तो वो आके बैठा, अब आप उसको कैसे हटा सकते हैं। इस आयत में कोई बात है जो समझने में ना आ रही हो? मेरा आपका मामला उस अल लतीफ और अल खबीर से है जो दिलों के भेद तक जानता है। और सबसे बढ़ के मुश्किल आयत सूरत मायदा की है, इसका भी नंबर ठीक नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, ए ईमान वालो तुम में से जो अपने दीन से फिरेगा, फिर जाए फिर, अल्लाह ने ये नहीं कहा फिर जाए फिर, लेकिन फीलिंग क्या दी, जाते हो तो जाओ। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, पसंद करीब ले आएगा अल्लाह उस कौम को, कौन सी, युहिब्बुहुम, वो अल्लाह से प्यार करेंगे, व युहिब्बुनहु, और वो उनसे प्यार करेगा। पहली खूबी यानी अल्लाह अपने बिलवेड वंस को ले आएगा, अल्लाह अपने चहीतों को ले आएगा, अल्लाह ताला अपने लाडलों को ले आएगा। दूसरी खूबी उनकी क्या होगी, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पर वो बड़े नरम होंगे, वो मोमिनों के हक में नरमी करेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर होगा उनके दिल में मुसलमानों के लिए, एक फितरी सी मोहब्बत होगी इस्लाम के नाम पर। और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के साथ सख्ती से पेश आएंगे, कौन सी सख्ती, जुबान की सख्ती नहीं, असूलों की सख्ती, फॉर्म के मानों में। वो मोम की नाक नहीं होंगे कि काफिर जिधर मोड़े वो मोड़ ले, वो तर निवाला नहीं होंगे, वो चने होंगे कि जो दांत टूट जाएं लेकिन चने नहीं टूटेंगे। तीसरी खूबी क्या होगी उनकी, युजाहिदू नफी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाले होंगे, जिहाद करने वाले होंगे, कोशिश करने वाले होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिस चीज़ को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको उठाएंगे। आपको पता है कि जिहाद कलम से भी होता है और जिहाद नफ से भी होता है और जिहाद मुआशरे से भी होता है और जिहाद तलवार से भी होता है। चौथी खूबी देखिए जो बहुत सारों का इशू है, वला यखाफून लौमत लाइम, और नहीं वो डरेंगे मलामत वाले की मलामत से। दूसरे लफ्जों में इसको लिख लें, वो लोगों की बातों से नहीं डरेंगे। तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हाल हुलिया बना लिया, क्या हो गया, बच्चों की शादियां नहीं करनी, ये मियाँ दूसरी शादी कर लेंगे। यानी जो लोग उनको मलामते करते हैं ना, और आपको इस आयत की तफसीर याद आनी चाहिए, आपको उस फिलुल जन्ना में हमने मुखालफत और मलामत का तकाबुल किया था कि मुखालफत दुश्मनों की तरफ से होती है, उनकी तो आदत ही आपकी हर बात पे मुखालफत करना, लेकिन मलामत प्यारों की तरफ से होती है। मुखालफत के लिए बंदा ज़हनी तौर पे तैयार होता है, देखना भी सुन लेंगे कोई बात, जबकि मलामत के लिए बंदा तैयार नहीं होता। और मुखालफत सरेआम होती है, लोग आपको बुरा भला कहते हैं। और मलामत कैसे होती है? मोहब्बत की शुगर कोटेड गोली में लिपटी होती है। बेटी ये क्या हो गया है, बेटा अपना सोचो, बेटा देख लो क्या होगा, यानी मोहब्बत में ये क्या हो गया, बैठ बैठ के मोटी हो गई हो, ये आंखों में हल्के पड़ गए हैं, तुम्हारा तो कोई रंग रूप ही नहीं रहा, तुम्हारा तो कोई हाल ही नहीं है, तुम्हारा तो शौहर ही पता नहीं दूसरी बीवी ना ले आए, ये मलामतें होती हैं, अपने बन के डसना। और जिसको ये चार चीज़ें मिल गईं, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीही मन यशा, इसको हाईलाइट करें ना तो आपको एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता नज़र आएगा। ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह जिसको चाहता है उसको देता है। 54 आयत माईदा की है ये। ये क्या फजल है भाई, मैं असल आपको जो सोच देना चाह रही हूँ उस पर गौर कीजिएगा। ज़ालिका ये क्या, जिसको अल्लाह ने फजल कहा, जिसको हम आप कहते हैं हाज़ा फजलुल्लाह, हाज़ा फजल मिन रब्बी। हम अमूमन फजल किसको कहते हैं? दौलत को, औलाद को, घर को, गाड़ी को, जी अल्लाह का बड़ा फजल है कहते हैं ना। अल्लाह किस चीज़ को फजल कह रहे हैं जी, आप बताएं फायजा। ये खूबियाँ जिसमें पैदा हो गई उस पर अल्लाह का फजल है। क्या हमारी नज़र में ये खूबियाँ हैं भी? फजल तो दूर की बात है। क्या मैं और आप अल्लाह के रास्तों में इस तरह जमने को अल्लाह का फजल कहते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को यहाँ बैठकर ये थोड़ा सा पढ़ाना पढ़ना, इसको अल्लाह का फजल महसूस कर रहे हैं? पूरी जुमले को दोबारा सुनें। अहले ईमान, अगर कोई तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। साथ साथ दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह मुझसे प्यार कर, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत है, जो मोमिनों के हक में नरमी करेंगे, अल्लाह मुझे मोमिनों के हक में बड़े ही नरम कर दें, मुझे सारे मुसलमान अच्छे लगें, मुझे गिरोह जमात फिरके का नाम नहीं, मुझे इस्लाम के नाम पे लोगों से प्यार दे दें, और काफिरों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। कैसी? अल्लाह मेरे दिल में काफिरों के तरीकों से नफरत दे दे, मुझे उनके रहन सहन से, उनके रख रखाव, उनके पहनने ओढ़ने, उनके कपड़े, उनकी चाल ढाल से सख्ती दे दे, और अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। अल्लाह तू हमें अपने रास्ते में मेहनत के लिए कबूल कर ले, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। इस पे तो हम कई दिन से बात करें, फिर बातों का डर नहीं रहता। मेरी बहन का बच्चा, मेरी बहन की बेटी, मेरे भाई का बच्चा, मेरे खाला की, मेरे चचा की, मेरे फुफ्फो की, जो भी है भाई, अल्लाह की बात सही नहीं मानते तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर लोगों की बातों का डर नहीं होता। आप यकीन करें कि अगर हम लोगों की मलामत की परवाह छोड़ दें तो हमें ज़रूरत आ जाए, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि हम दुनिया में आ जाएं। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं गुलामी की ज़िंदगी बसर करें इस वक्त। कौन सी गुलामी? ज़हनी गुलामी। डरते ही रहते हैं हर वक्त रिश्तेदारों से, अब कोई ये ना कह दे, अब कोई बात ना हो जाए, दावत नहीं पकाई बातें होंगी, दावत पकाई खाना एक पकाया बातें होंगी, कुछ दिया नहीं तो बातें होंगी, दिया है तो अच्छा नहीं दिया तो बातें होंगी, उनके मौके पे शादी पे नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए बातें होंगी, उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे नहीं दे सके बातें होंगी। मान लें कि दुनियादार शख्स अल्लाह से इतना नहीं डरता जितना लोगों से डरता है। और मैंने दीन वाले देखे, उनको ना दामाद की बात की परवाह है, ना उनको बेटी की सास की बात की परवाह है। गलत है तो गलत है, वो कहते हैं हमारे ऐसे कोई उम्मीद ना रखना, हमने बेटी दे दी इतना ही बहुत है, अब तुम हमसे कोई उम्मीदें ना लगाओ कि हर मौके पे हम तुम्हें ईद शब रात भेजें। आप देखिए हम तो छोटी छोटी बातों पर डरते हैं, रिश्ता हो जाता है ना, ईद क्या भेजी, गर्मियों में कितने जोड़े आए, अच्छा सास को साथ क्या दिया, अच्छा उनके वो फलां फलां की शादी हुई तो क्या सबकी दावत की ना की। ये छोटे छोटे खौफ इतने पाले में हैं लोगों ने आज, कि इन्हीं को निभाते रहते हैं और अल्लाह के रास्ते से भाग जाते हैं। जितनी सोशलाइजिंग होती है उसके पीछे मुमन क्या वजूहत होती हैं? अल्लाह ने कहा मिले, खाएं, बुलाएं, दावतें करें, पर आप इसकी वजह से अपनी जिंदगी के मकसद से तो दूर ना हो ना। तो याद रखिए कि ये फरीजा इकामत दीन है और ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, इसके बगैर मैं और आप नहीं बचेंगे। آج ہم مسلمانوں نے اس فریضے کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں. اچھا، ابھی تک ہم نے حقوق العباد کے ٹاپک میں اور معاملات میں نہ تو ماں باپ کے حقوق کی بات کی. جب آپ سوچتے ہیں نا اپنے تصور میں، اچھا جی عقائد، پھر عبادات، پھر اخلاقیات، پھر معاملات، تو معاملات میں سب سے پہلے ہمارے ذمے حقوق آتے ہیں. ابھی ہم نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. وجہ کیا ہے کہ ہم پہلے ایک نیشن وائز، ایک ہیومن لیول پہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو دوسرے حقوق ہیں نا، والدین کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، مسلمانوں کے حقوق، یہ بعد کی بات ہے، یہ چھوٹا لیول ہے. اگر آپ پوری دنیا کو کچھ نہیں دے رہے، یعنی آپ کہہ لیجئے سب سے بڑا حق ہم پہ انسانیت کا حق ہے، اور وہ کیا کہ ان کو ان کے خالق سے جوڑے، ان کو اسلام کی خوبصورتیاں دکھائیں، تو میرے آپ کے معاملات میں سب سے بڑا معاملہ دین کی دعوت کا ہے. انسانوں کی خیر چاہیں، تڑپیں، روئیں، اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، اپنے نیبرز کو دیکھیں. جو لوگ آپ کو راہ جاتے سڑکوں پہ دکھتے ہیں، آپ کی لیفٹ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نیچے ایک پارکنگ لاٹ میں لوگوں کو دیکھیں، تڑپیں. یہ ہے سب سے بڑا معاملہ جس میں مجھے آپ کو کودنا ہے، کہ ہم پہلے اس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد والدین کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، عام مسلمانوں کے حقوق آئیں گے. اور ان میں سب سے ابری ہوئی بات یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کا انتظام کریں. لکھ لیں، حقوق العباد میں بندوں کا بندوں پہ سب سے بڑا حق، ان کی ہدایت کی فکر کریں، ان کو ابدی آگ سے بچائیں، ان کو جہنم سے بچائیں. ہم جب رشتہ داریوں کی اور ہمسائے گیری کی اور ان خاندانوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم ان کی دعوتیں، کھانے پینے، تحفوں کی بات ہے، ہدایت کی فکر نہیں کرتے. جو پہلے ہی ان کے پاس بہت ہوتا ہے وہ اور لے دیتے ہیں، ہدایت کی چیز نہیں لے کے دیتے. ان کو دوزخ سے بچانے کا انتظام کرنا، ایسا اجتماعی نظام قائم کریں جو عدل اور ہدایت پر قائم ہو. اگر ہماری سیاست کا یہ مقصد بھی بن جاتا ہے تو پھر سیاست ایک نجس چیز نہیں رہتی، پھر سیاست عبادت بن جاتی ہے، پھر کرسی ناپاک نہیں رہتی بلکہ وہ ایک مقدس امانت بن جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سلطان یا امیر المومنین یا مسلمانوں کا حاکم، زمین پر اللہ کا سایہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو اچھے حکمران دے دے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا، اب ایک مرتبہ قیصریت ختم ہو جائے. قیصریت کیا تھی؟ قیصر و کسرا، یاد ہے آپ کو، روم کے حکمران کو قیصر کہتے تھے. پھر کبھی قیصریت نہیں آئے گی، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ایک مرتبہ ایران کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست ہوئی، ایک مرتبہ مسلمان صحابہ کے ہاتھوں سلطنت روما یعنی رومن امپائرز کو شکست ہوئی. اس کے بعد سے دنیا کے اندر سے شہنشاہیت کا وجود مٹنے لگا. پھر جمہوریت نے پوری دنیا کے اندر ایک ٹھان لی. آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے اندر نظام شورائیت، شورائیت کیا ہوتی ہے؟ شورا، مشورہ کرنا، اس سے جمہوریت کی اٹھان ہوئی اور قیصریت و کسرائیت ہمیشہ کے لیے ختم اور دفن ہو گئی. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے حقوق دیتے ہیں نا، تو آپ سیاست میں بھی چلے جائیں تو آپ عبادت ہی کر رہے ہیں، آپ وہاں تک آواز اٹھا رہے ہیں اسلام کے نام کی جہاں تک دوسرے نہیں اٹھا سکتے. پھر آپ دوسروں کو واقعی اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. تو ساری بات جتنی ابھی پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا آپ کا سب سے بڑا مقصد زندگی کا امر بالمعروف نہی عن المنکر اور لوگوں کو خیر کی دعوت دینا. اس کے بعد جب تک سب لوگوں کی ہدایت کی فکر نہ لگ جائے، آپ اور میں انسانی حقوق کا حق ادا نہیں کر رہے. باقی چیزیں اس کے انڈر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے حق کے ذمہ داری ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. بس آپ اپنے بچوں کو کھانا دیتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، آخری ٹاپک آئے گا بچوں کے حقوق، ماں باپ کے. کل کا ٹاپک سارا یہی ہے کہ ہم آپس کے ریلیشن شپ کیسے اچھے کریں، اپنے گھروں میں تعلق کیسا اچھا رکھیں. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ایک بہت بڑا کام دیا ہے. آپ ماں ہیں نا، تو آپ اپنے بچوں کے کھانے پینے، ان کے کپڑے لباس، تعلیم کی فکر کرتی ہیں نا. یہ سب انڈر ہے کس کے؟ ان کی ہدایت کے. آپ کو اللہ نے ایک بچہ دے دیا، مان لیجیے اللہ نے آپ کو اس کی ہدایت کا سرا پکڑا دیا. आपकी शादी हुई, एक मर्द आपकी जिंदगी में आया या एक औरत आपकी जिंदगी में आ गई, अल्लाह ने आपको सिरा पकड़ा दिया उसकी हिदायत का, जाओ उसके दीन को पहले से बेहतर करो। यानी आज इस बात के ऊपर अपनी सोच को मरकूज करें कि मेरे ऊपर इंसानों के जितने हकूक है ना, सबसे बड़ा हक उनकी हिदायत की फिक्र करना। और एक जुमला अक्सर ही बोला मैंने, फिर बोल देती हूँ यहाँ भी आपके फायदे के लिए, कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। ये एक ऐसी आग है, जब आपके अपने अंदर लगती है ना तो आप दूसरों के लिए तड़पते, यही है जिसको फला अल्लाह का बाख नफ्स कला आसारी है। सूरत कहाव के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला कहते हैं, नबी आप तो खुद को हलाक ही कर लेंगे लोगों के गम में, कि ईमान क्यों नहीं लाते। सूरह शुरा में भी यही बात कही। तो अगर मुझे अभी तक अपने खानदान की हिदायत की फिक्र नहीं लगी ना, अमली नामों से तो हम बहुत कहते हैं, बातों में तो हम कहते हैं बड़ा ही डर लगता है, और काम तो अल्लाह की नाफरमानी के करें। भाई आपको पुलिस से डर लगता है तो आप सीट बेल्ट बांधते हैं ना, आपको टिकट से डर लगता है तो आप ओवर स्पीडिंग नहीं करते ना, तो ये कैसा अल्लाह का डर है जो लफ्जों में तो आप दिखा रहे हैं लेकिन आपको किसी गुनाह से नहीं रोकता। फिर मजबूरियों में पड़े हुए अभी तक आप अल्लाह का डर आ ही नहीं रहा। नहीं, जुबानी कलामी नहीं, हकीकी मानों में अपने आप को इस चीज पे तैयार करें। लिस्टें बनाएं, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाएं पूरे खानदान की, फिर अपनी दोस्तों की, अपने बच्चों के दोस्तों की, उनके घरों की, कहां किस तरह हिदायत का पैगाम पहुंचाना है। ये तड़प लगेगी ना तो आप कुछ कर सकेंगे आगे जाके, वरना नहीं। अपनी हिदायत अधूरी होती है ना तो हम कहते हैं क्या बुरे बने। तो आज से एक क्राइटेरियन रखें। मैं ऐसे खूबसूरत साथियों को जानती हूं, मैं खुद अपना तकाबुल करने लग जाती हूं उनके साथ, जितनी उनको तड़प है। कोई मौका नहीं जाने देना दोस्तों को बुलाने का, रिश्तेदारों को बुलाने का, माल खर्च करने का, सफर करने का, किसी भी मौके पे कुछ भी करना है लेकिन हमने दूसरों को दावत देनी है। एक ऐसी साथी है, मैं भी पाकिस्तान में थी तो मैं खुद भी एक शादी पे थी बिजी उन दिनों में, तो वो खुद भी किसी शादी में गई हुई थी, तो मुझसे मुसलसल उनका रब्ता था। तो वो कहने लगी कि मैं बड़ी कोशिश में हूँ कि जहाँ शादी हो रही है मैं वहाँ दर्स कराऊँ, मैं आके बात कर रही हूँ, कोई बात बन नहीं रही, घर का माहौल ऐसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। खैर किस्सा मुख्तसर, पसरूर शहर है मेरा ख्याल, तो वहाँ उन्होंने एक दर्स रखा। मैं लाहौर में थी, उनको पता था मैं नहीं आ सकती, वो मेरा पहले से वहाँ लाहौर में दर्स था। किस्सा मुख्तसर, उन्होंने मेरे से सेटिंग की, कहें कि कोई बात नहीं मैं इधर लेक्चर प्ले करूँगी, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ जाइएगा। देखें पकवाई, घर वालों को जमा करके, खानदान को इधर उधर फिर, लोग खानदान के नाम पे आ भी जाते हैं, और जबकि बाहर से आने वाला बुलाए तो खूब जमा हुए लोग। फिर उन्होंने वहाँ दर्श करवाया, बाद में मैंने फ़ोन पे या जैसे भी किया तो मैंने जो 10-5 मिनट बात करनी थी दुआ करा दी, बहुत खुश हुए सारे। खैर वो इधर से उठ के दूसरे एक और शादी में अगले हफ्ते की बात थी, तो मुझे कहने लगी मैंने इधर भी करना है। अब आप इमेजिन करें कि आप अपने किसी के भी रिश्ते, आप ससुराल में गए, आपके देवर के बेटे की शादी है, मिसाल देती हूँ, आपकी क्या हैसियत है वहाँ, आप बहू ही हुई ना उस घर की, या आप कह लें कि बड़ी बहू हुई कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी कह लें। मुझे उनका एकदम फ़ोन आया, कहने लगी कि आज हम दुल्हन लेकर आए हैं, बहू जो भी उनके ससुराल में बेटा था उसकी शादी थी, तो मैंने बात की है घर वालों से, तो दुल्हन को लेके आएंगे तो घर में बैठना है, तो मैंने उनसे कहा है कि हम सब बैठ रहे हैं ना तो हम थोड़ी सी अच्छी सी बातें कर लें। तो कहती कि मेरी उम्मीद के खिलाफ सब ने कहा जी बहुत अच्छी बात है, वैसे तो हमने बैठ के गप्पे शप्पे लगानी थी, ये वो करना था, तो आप कुछ करें। इनका मुझे फ़ोन आया बड़ा एक्साइटमेंट में, मैं क्या सुनाऊँ क्या करूँ। मैंने उन्हें कहा कि वेबसाइट पे एक लेक्चर, पहला ही लेक्चर है मैरिड लाइफ में, नए रिश्तों को कैसे निभाएं, छोटा सा लेक्चर है, मुझे लगता है कि ये अच्छा रहेगा। किस्सा मुख्तसर, स्पॉन्टेनियसली इन्होंने इधर से एडमिन से रब्ता करके वो लेक्चर लिया, और मेरे से मुसलसल फ़ोन पर वो मैसेजेस में थी, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर रहे हैं, वही बात थी कि आखिर में आप बात करिएगा। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मेरे अपने बहन के बेटे का वलीमा भी था, तो मैंने उसको ना नहीं की कि मैं कहूँ, मैंने कहा फ़ोन मेरे हाथ में, फ़ोन करेंगी, मैं शादी हॉल से भी ले लूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। मैंने कहा जहाँ कहेंगी मैं कोने में बैठ के इनके साथ चार बातें कर लूँगी। उधर प्रोग्राम डिले होता होता ऐसा हुआ कि हम लोग इधर से फारिग होकर घर आ गए। एग्जैक्टली जब मेरी बहन के घर हम आकर बैठे, मज़े की बात देखे कि अल्लाह के प्लान क्या होते हैं, कि वो उधर उन्होंने लेक्चर सुनने सुनाने में सारे उन्होंने 30-40 मिनट का लेक्चर भी सुना सुनाया, मुझे बता रही है सारे बड़े शौक से सुन रहे हैं, ये है वो हो रहा है, और एक भी कोई गलत काम नहीं हुआ। वरना मैंने देखा है कि इन्होंने ढोलक भी रखी हुई थी, ये कुछ करना था तो ये लेक्चर जो चल गया तो अब कुछ नहीं हो रहा, तो बस आप रेडी रहेगा। इधर मैं घर जाके अपनी बहन के बैठी, मैंने कहा चलो वहां तो बात नहीं हो सकी, घर में थोड़ी देर हम बैठ के तो फिर जाते हैं। दुल्हन बैठी हुई इधर और साथ वो सारे जो क्लोज सर्कल, जो मेरी अपनी बहन का ससुराल था, जिनसे अगर मेरा भी दिल करे बात करने को तो मैं करूं, तो उनका फोन आ गया। उसे दुआ करा दे, इधर दुल्हन है उसके साथ चार बातें करे। मैंने कहा ये दुल्हन नहीं है, दुल्हनान है, दो दुल्हने हैं। आप सुने मेरा लेक्चर रिकॉर्ड भी मैंने किया, फोन था मेरे पास जो भी। फिर मैंने अपने साथी जहां मैं बैठी, आप सोचो ना एक ड्राइंग रूम में बैठे और आपके 10-12 लोग यार, नहीं दुल्हन है और आप शादी से हैं, तो लोग हमेशा ऐसे मौके पे भी रीक आ रहे होते हैं ना, कैसा सारा प्रोग्राम क्या हुआ, खाना ठीक था, ये ऐसी बातें करनी थी ना। मर्द अंदर थे, हम औरतें थी इधर। मैंने थोड़ी सी आवाज निकाली, मैंने कहा आप सबको मैं थोड़ा सा करूँ इन्वॉल्व, कि अब मैं जो बात करने लगी, वैसे तो मैं उठ के अंदर चली जाती, लेकिन अब जो बात मैं एक दुल्हन से करूंगी तो एक दुल्हन इधर भी तो है ना, तो ये तो हमारी अपनी है, तो आप इजाजत दें, आपका मूड है कि हम कुछ बात करें, तो अब जहर किसने ना करनी थी। जी जी जरूर जरूर करें। वो अच्छा खासा 15-20 मिनट का लेक्चर भी हो गया दुल्हन से बातें, इधर मैं अपनी दुल्हन से बात कर रही हूँ, उधर उनकी दुल्हन थी, इधर हमारी दुल्हन थी, दोनों को बार बार मुखातिब कर मैंने उसका नाम भी पूछ लिया। फिर उसके बाद जब दुआ आई, तो वो जो दुआ मैंने रो के मांगी, मेरी नज़र में वो सियालकोट वाली दुल्हन थोड़ी थी, वो तो मेरी घर की दुल्हन थी। दुआएं निकल रही थी मेरे दिल में अपनी बहन के लिए, वो उनको भी मिल गई। हर एक बंदे का दिल होता है ना कि खुशी दे, इतनी रो रो के मैंने दुआ करा दी वो, मैंने कहा शुक्र है फंक्शन खत्म हो गया, सबके मेकअप खराब हो गए, वह अब तो दोनों ही था मुंह। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि मौका नहीं जाने दिया। और मेरे से ये नेकी किसने कराई? उन्होंने कराई। मैंने शायद नहीं थी बात करनी कि इनको तो मैं और वक्तों में भी सुना लूंगी, अभी कोई जरूरी है इस वक्त बोलो, लेकिन उन्होंने मेरे से ये नेकी कराई, तो उस वक्त मुझे फिर एहसास हुआ कि क्यामत के दिन बहुत सारे लोग बहुत आगे होंगे मेरे से, उन्होंने मौका वेल किया। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं होती तो मैं ये बात करती, जैसे ये पीछे पड़ गई उनके, तो मैंने पढ़ना था उनके पीछे। कौन सुनता है शादियों के मौके पर इतने आराम से, जब तक आप एक माहौल ना बनाए। और उसका इतना अच्छा असर हुआ कि वो तो फोन बंद हो गया, इधर रोना धोना शुरू हो गया कि हमें आज बड़ा फायदा हुआ और ये हुआ और वो हुआ ना। तो याद रखे, जिंदगी का हर मौका दावा का मौका बनाए। ये दावा मोमिन की जिंदगी में, बीमारी भी इसलिए आती है कि हॉस्पिटल में जाए वहां बैठे हुए लोगों को दावा दे। मोमिन को मुकदमा भी इसीलिए कभी पड़ता है कि वो अदालत में जा रहा है ना, वहां बैठे लोगों को स्टडी करे और उनको समझाए कि किधर पड़े हुए हो। आपकी जिंदगी का हर मौका जो अल्लाह आपको देता है ना, आपके घर मेहमान आए, आप कहीं जाएं, शादी में जाएं, खुशी में जाएं, दैट इज अ चांस फॉर दावा। ये जिंदगी का मकसद है, ये समझ जाए। बाकी नमाजें रोजे तो अल्लाह को पता ही हमारे जैसे हैं, नमाजें पढ़ के बचना भी कोई नहीं खाली, अगर ये दावा ना दी तो कोशिश करें हर मौके पे। ऐसे खजाने हैं, मैं कहती हूँ एक बंदा का जिक्र करूं दूसरे का ना करूं तो मेरी ज्यादती होगी, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसे ऐसे खूबसूरत साथी दिन रात दिए जो मेरे से काम लेते हैं। मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि ये आप हैं जो मुझसे काम लेते हैं, मेरे से तो निकम्मा और बेकार बंदा ही कोई ना होता अगर आप मुझे फोन ना करें। आप मुझे नेकियों के मौके देते हैं, चांस देते हैं। कल एक मैसेज था आने से पहले, इधर इस दफा अमेरिका से मैं इधर आने वाली थी, टिकट बुक थी, अचानक एक बहुत ही इंसिस्टिंग कॉल थी, पहले से भी आ रही थी लेकिन हमें चूंकि पता था मैं चली जाऊंगी फिर कब आना होगा, तो शिकागो से एक सिस्टर की कॉल आ गई कि आप लोग आए ये वो। मेरे सामने चूंकि फोन आ रहा था, सिस्टर थी जो वहाँ हमारी साथी गाड़ी में थे हम लोग, तो मैंने इशारे से कहा सुनो कोई बात नहीं। अतीक मुझे कहती उस्ताजा कैसे होगा, एक हफ्ता रह गया आपके जाने के, अटलांटा में इतनी मीटिंग। मैंने कहा सुनो, तो मैंने उसे कहा कि हैंड फ्री करके सुनाओ, मैं देखूं उधर जरूरत कितनी है और ये सिस्टर किस दर्जे की लगा लें के बात करने वाली है, मतलब फायदा कितना होगा, वर्थ इट कितना है। खैर वो दूसरी सिस्टर बात कर रही थी उनसे, मैं और अतीक भी गाड़ी में थे, हम सुन रहे थे। अब जो उसकी बातें सुनी तो हम दोनों का सर हिल रहा था कि ये ऐसी होस्ट अगर मिल रही है तो ये कोई अल्लाह का ही फैसला है। खैर पूरी बात सुन सुना के उसको हम बातें ऐसे इशारे से पूछ रहे थे, ये भी पूछो वो भी पूछो, फोन बंद हुआ। अब उसने क्या सुनाना था, हमने तो सारा खुद ही सुन लिया। मैंने कहा ठीक बताइए क्या करना चाहिए। उस्ताज़ा यू शुड गो, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, आपको शिकागो जाना चाहिए। मैंने कहा शाहीन जी आप सुनाएं। कहती उस्ताज़ा मैं तो आपको पहले ही इतने दिन से कह रही हूँ। अब वो बेचारी खुद हमें कहती तो हम टाल देते थे, शाहीन आपको नहीं पता इतने काम है, वो बेचारी चुप कर जाती थी। ये तो अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि वो कॉल उस वक्त आई जब हम तीनों गाड़ी में थे और कहीं जा रहे थे, तो कहने लगी कि ज़रूर जाना चाहिए, ये सिस्टर कब से रमज़ान से तड़प रही हैं और वो कहती है मैं सब कुछ करूँगी, ये है वो है। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, बात देखो टिकट बुक करो। खैर 2 दिन के नोटिस पे उनको इन्होंने बताया कि ये 2-3 दिन बीच में खाली हैं, यानी ये आ सकती हैं, इसके ना आगे आ सकती है ना पीछे आ सकती। उसने कहा मुझे जो भी दिन दे दें मैं वो दिन करने को तैयार हूँ। मैं गई, ये कल मैसेज आया, मैं आपको अब सुनाती हूँ। मुझे उनका नाम भी नहीं याद, ये नंबर से मैंने जाना है कि ये शिकागो का नंबर है, मुझे एरिया कोड याद है अमेरिका के, मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं याद, सोचूंगी या फ्लायर देखूंगी आएगा। कि कल मैं घर गई तो इनका मैसेज था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फतापा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके शिकागो ट्रिप से माशाल्लाह 100 कॉन्टैक्ट्स मुझे मिले थे और ऑल दे आर इन दौरे कुरान टू अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उर्दू इंग्लिश मिक्स है ना तो पढ़ना मुझे मुश्किल लग रहा है। कह रही हैं कि 100 कॉन्टैक्ट्स मिले थे, उन सब को दौरे कुरान शुरू कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई गोल्ड डोनेट करना चाह रहा है कुरातुल ऐन प्रोजेक्ट के लिए। ये आपके लिए, तो मुझे याद भी नहीं थी बात, ये आपके स्कूल के लिए वहां से गोल्ड डोनेट करना चाहता है, बताएं कि वो कैसे गोल्ड डोनेट करें। ये कल उनका मैसेज आपके लिए आया। ये शिकागो ट्रिप 100 लोगों को अगर दौरे कुरान से, और ये 100 तो एक ग्रुप बनाया था ना हमने माशाल्लाह, उन्होंने 4 दर्स कराए थे, 3-4 जहां भी जा सके, अमेजिंग रिस्पॉन्स था। और मैं जब पहले अमेरिका रहती थी तब शिकागो हम ऑलमोस्ट हर साल जाते थे, 18 घंटे की ड्राइव थी ह्यूस्टन से। इस दफ़ा अटलांटा से हम गए, हमें बाय प्लेन ही जाना पड़ा, टाइम शॉर्ट था, लेकिन इतनी खैर फैली। और जिन लोगों के पास गई मैंने, जब उनके हालात और उनके सरकमस्टांसेस देखे, मेरा सर सजदे से नहीं उठ रहा था कि अल्लाह तू मुझे ले आया। वल्लाह ऐसे औलादे हाथों से निकल रही हैं, कहते उस्ताज़ा बच्चे तो अब जन्नत भी नहीं मांगते, कहते हमें नहीं चाहिए जन्नत, बोरिंग, नो म्यूजिक, नो फ्रेंडशिप। वल्लाही कहती आप ये जुमला ना बोला करें दरसों में, आप अक्सर बोलती हैं कि जन्नत तो सभी चाहते हैं, आप पीपल डोंट वॉन्ट जन्ना। कहते मम्मी यू शुड गो टू जन्नत, वी डोंट वॉन्ट, बोर हो गए। जैसे आज माँ के साथ नहीं जाना चाहते ना बच्चे शादियों में, क्योंकि घर में उनकी जन्नत है, उनका आईपैड घर में, वो कहते हैं आप जाएं मुझे नहीं जाना शादी में, बोर होंगे। आज इतना बड़ा इशू है बच्चों को माँ बाप का साथ लेके जाना, छोटे हैं तो आप खींच के ले जाएंगे, जरा जवान वो कहेंगे मैंने नहीं जाना। हर घर में मैंने ये रोना देखा है, जाते नहीं बच्चे शादी पर, आखिर मियाँ बीवी उठ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको घर में अपनी एंटरटेनमेंट मिल रही है, वो वहाँ आपके साथ बोर की हों इतना घंटा लगा कर खाएं, वो अभी ऑर्डर करेंगे मैकडोनल्ड से, घर में बर्गर आ जाएगा, पिज्ज़ा आ जाएगा, उनको क्या लगे, उनकी अपनी दुनिया। कहते जॉर्ज टॉक टू योर इनविजिबल फ्रेंड, कहती बच्चे क्या कहते हैं, अल्लाह इज योर इनविजिबल फ्रेंड, वी डोंट बिलीव ऑन हिम, तुम पता नहीं किसके साथ बैठ के बातें करती हो, जॉर्ज यू शुड गो, वी आर नॉट गोइंग टू जन्ना। अब आप मुझे बताएं कितनी जरूरत है दावा की, और मैं शुक्र नहीं जा ला सकती अल्लाह का कि अल्लाह का किन किन लोगों से तो मुझे मिलाता है जो मुझे गैरत गुस्सा और ग्रज देते हैं और मेरा दिल करता है बात करने को, नहीं तो मैं भी कहूंगी दुनिया में सारे अच्छे हो गए जो सामने नजर आते हैं वो सारे कुरान वाले हैं। ये जो लोगों से जाके मिलना होता है ना, ये मुझे जो देता है, ये तो मैं कहती हूँ मैं अपनी जगह पे बैठ के पढ़ती पढ़ाती रहूँ, मुझे वो दर्द ही ना मिले जो मैं इंसानों में जाकर लेके आती हूँ। मर्द अपनी दुनिया में मगन है, माएँ जो है वो माँ भी बनी हुई है, वो बीवी भी बनी हुई है, वो चौकीदार भी है, वो मर्दों को परवाह कोई नहीं। ऐसी बेदीनी फैली हुई है कि मैं कहती हूँ ऐसे लगता है कि एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शादियाँ हुई हुई हैं। घरों के माहौल देखे बर्फ की तरह ठंडे, कोई इस्लाम की गर्मी नहीं दिखती आपको। मैं तो रो के आती हूँ अल्लाह तूने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, तो मेरी इन बहनों को भी दे, ये भी तो घरों की खुशियाँ देखे, इनको भी तो दीन की बहारें मिले, इनके मर्द ऐसे क्यों हैं। बड़ी ठंडी जंग है, यकीन करें इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बर्फ की सिल बनी हुई है। अभी भी ट्रिप है, अगले हफ्ते से एक ट्रिप हमारा इधर छोटा सा ट्रिप है यूरोप में जाने का है, लेकिन उसका मकसद भी यही है कि दौरे कुरान है, रमज़ान है, हर एक की ख्वाहिश होती है इधर आ जाए, रमज़ान इधर करें, वो करें, उधर करें। पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुँह से बात ही नॉर्वे की निकल रही है, लेकिन अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो ये साल कोई बात नहीं, जो भी उठा लेगा मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आप जी बिल्कुल, ये तड़प ये हमें ज़रूरत है। ये लग पाते कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए, काम पड़ा हुआ घर में, हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कौन देखेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए और काम कितना है हमारे पास। जी अनीला जी, आप शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम।
मैं वही देख रही थी कि पहले तो हमें भी पता है कि अपने घरों से ही शुरू करना है, साल गुजरे अब
जी आप
मैं
देखिए, वो कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं है जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोते से जगा दे। तो हमें अब जो ख्वाब देखे हैं हमने इंसानियत के लिए और उम्मत के लिए, तो उसके लिए जागना ही पड़ेगा ना, कुर्बानियां तो देंगे। एक तो हर रोज कब्रिस्तान के आगे से गुजर के आते हैं, हर दिन यकीन करें आप, मैं तो खुश हूं कि अल्लाह ने ऐसी जगह घर दिलवाया है कि रस्ते में कब्रिस्तान है। हर दिन मैं सोचती हूँ एक और दिन है, आज मैं जिंदा हूं, मैं कब्र में भी तो सकती हूँ। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि वो आते जाते हुए आप फिजिकली देखते हैं एक चीज, तो आपकी सोच तो जाती है ना। और अगर बेहिस हो जाएं तो देखना छोड़ दें तो आदत ही नहीं रहेगी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हम हिब्रतन कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये लोग जो से हिदायत के बगैर ही अल्लाह के पास चले जाते
जी
हैं।
ये हम तो
मैं
बड़े
जब
रौनक से कहते हैं ना, गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान है। मैं वॉक के गई उस दिन, तो मैं वहां खड़ी होके तो यही बात कह रही थी कि ये बगैर इस्लाम के क्यों चले गए,
वो हम उनके लिए
इनकी
दुआ
कब्र
करते
पे
जा रहे
स्लीप
थे।
क्यों लगी हुई है। जो मेरे साथ थी बाजी, मैंने उन्हें कहा ये वाइट क्यों है, कुछ की कब्रों पे कतबे, कुछ पे काले हैं। इनके भी डिफरेंट शायद मसलक हैं, क्या है, किसी की कब्र पे स्लीप लगी हुई है, किसी के ऊपर आप देखेंगे ना तो वो पीछे जो कतबा सा होता है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, काली है, किसी में सफेद है। तो अल्लाह जाने अब इनकी क्या सोचें थी। जी आप
मैं सोच रही हूँ कि आज हम अपनी नस्लों के बिगाड़ के खुद जुम्मे कि ये
आप
सबसे
देखें ना
पहले
कि अगर पेट की भूख है तो रूह की भी तो भूख है ना। हमारा शौहर एक वक्त भूखा अगर सो जाए तो हमें कैसा लगेगा, हमारे बच्चे भूखे सो जाएं तो कैसे लगेंगे। तो हिदायत से भूखे सोएं तो हमें चैन कैसे आए। और ये तड़पे ये प्यार से बताएं, वो कहना कुछ पकाओ, आप कहेंगे मैं क्यों ना पकाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए पकाती हूँ। तो आप इस तरह के मैं क्यों ना तड़पूं, आप नमाज के बगैर सो जाए मैं क्यों ना तड़पूं, मुझे कैसे चैन आएगा। आप प्यार और मोहब्बत से लोगों की भूख जगाएं, तो अल्लाह ने औरत के हाथ में वैसे ही मेरा ख्याल है कि ये गुण रखा है कि वो बात मनवा ही लेती है, चाहे कोई जान छुड़ाने के लिए माने या कन्विंस होके माने, मर्द बात मान ही जाते हैं। जी आप समिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं।
आगे वाली फिर भी जब तहरीर सुना रही फिर मैंने
देखिए
देखा कि
अपनी
आज से
तरबियत जो
मेरा
है ना, असल में वो बच्चों की तरबियत है,
हाँ जी अपने आप को चेंज करना है।
कहना नहीं पर आप स्टेयरिंग मोड़े ना तो पूरी गाड़ी मुड़ती है, ऐसी है ना। तो औरत स्टेयरिंग है, उसके साथ मर्द है, बल्कि आप कहते हैं ना मर्द स्टेयरिंग है, नहीं, घर का स्टेयरिंग औरत के हाथ में होता है। जिधर औरत मुड़ती है साथ बैठा शौहर भी मुड़ेगा, पिछली सीट पे बैठे हुए बच्चे भी मुड़ जाएंगे। आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती, पहले माँ बाप को बच्चों पर इतनी मेहनत करनी ही कोई नहीं थी पड़ती, वजह क्या थी, खामोश तरबियत हो रही थी, राइट।
दिन ब दिन बहुत ज्यादा
बिल्कुल, इल्म जो होता है ना वो इंसान के अंदर की आंखें खोल देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमसे राजी हो जाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।